जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। नवी पुस्तक जो चतुर्थ खंड है, उसमें कृति अनुयोग द्वार की बात चल रही है। हम यहाँ पृष्ठ संख्या 46 पर आ गए, 46। कल क्या देखा उसको दोबारा देखकर आगे बढ़ेंगे। देशावधि के बाद परमावधि जिनों को नमस्कार किया है और परमावधि ज्ञान की बात यहाँ बता रहे हैं। जैसे हमने द्रव्य देशावधि में अवधि ज्ञान के जघन्य से उत्कृष्ट तक अलग अलग भेद देखे थे, परंतु देशावधि के भेद जो है काल की अपेक्षा भेद अलग है, क्षेत्र की अपेक्षा भेद देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा है, द्रव्य की अपेक्षा भेद देखेंगे तो उससे भी असंख्यात गुणे हैं। द्रव्य की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा भेद जो है वो समान है, क्योंकि द्रव्य ने सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंधों को आगे आगे जाते जानते हैं और भाव में असंख्यात गुणे पर्यायों को जानते हैं। परंतु क्षेत्र में हमने देखा था कि जब अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण द्रव्य के विकल्प बीत जाते हैं, तब जाके एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है, और अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र के विकल्प बीत जाते तब एक समय बढ़ता है काल में। ये शुरू में ऐसा है, बाद में क्षेत्र तो और ज्यादा बढ़ेगा, तब जाके एक समय काल का बढ़ेगा। इसलिए वहां द्रव्य क्षेत्र काल और भाव एक साथ नहीं बढ़ते थे, विकल्प उसके एक साथ नहीं होते। पर परमावधि में क्या बात है, जितने द्रव्य के विकल्प है उतने ही क्षेत्र के विकल्प है, उतने ही काल के और उतने ही भाव के हैं। तो जितने परमावधि के भेद है उतने ही द्रव्य की क्षेत्र की काल की और भाव की अपेक्षा से भेद है, इसलिए सबकी शलाका राशि एक ही है। ये बात कल बात आई थी। तो ये शलाका राशि, या दूसरी भाषा में कहो तो परमावधि ज्ञान के भेद कितने हैं, उसी को शलाका राशि कहा था। तो वो कितने हैं, तो अग्निकायिक जीवों के अवगाहना के जितने भेद हैं उसी को अग्निकायिक जीवों की संख्या से गुणा करेंगे, जो संख्या आती है वे परमावधि ज्ञान के भेद है और उसी को शलाका राशि कहा है। देशावधि यानी उत्कृष्ट देशावधि का जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है उसके आगे सभी परमावधि के भेद है ना, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, तो उसको भेद की संख्या कहो या शलाका राशि कहो एक ही बात है। तो द्रव्य की द्रव्य अलग अलग द्रव्य कितना कितना है उसको निकालने के लिए हर बार ध्रुवहार से भाग देते चले जाएंगे। तो अंतिम जो है उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य कितना है, तो ध्रुव भाग हार जितना है। क्यों? क्योंकि उसके आगे जो सर्वावधि का भेद है उसकी संख्या होगी एक परमाणु, और वो कैसे आएगी एक संख्या, ध्रुवहार को ध्रुवहार से भाग देंगे तो ही एक आ सकता है ना। ये तो द्रव्य की अपेक्षा भेद हुए। क्षेत्र की अपेक्षा भेद देखनी है तो उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र कितना है या देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना हमने देखा था, एक लोक, लोक देखा ना, तो उसको असंख्यात से गुणा करना। शुरू में तो हमने देखा था आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा करेंगे तो क्षेत्र का प्रमाण आएगा। काल हमने देखा था उत्कृष्ट देशावधि का पल्ल्य में एक समय कम, उसको भी आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा करेंगे, यानी असंख्यात से गुणा करेंगे तो आगे वाला जो काल का विकल्प होगा। भाव में यथा योग्य असंख्यात से गुणा करेंगे तो भाव होगा। तो ये परमावधि का जघन्य भेद हुआ, उसके आगे वाला भेद निकालने के सभी एक साथ चेंज हो जाता है, काल क्षेत्र द्रव्य भाव सब। देशावधि जैसे अभी यहां नहीं है, देशावधि में तो असंख्यात वो बीत जाते तब जाके क्षेत्र बदलता था, और असंख्यात क्षेत्र के विकल्प बीत जाते तब जाके काल बदलता था। परमावधि में ऐसा नहीं है, सब एक साथ जितने विकल्प है द्रव्य के उतने क्षेत्र के काल के और भाव के है। तो ये जो क्षेत्र का या काल का गुणकार जो है वो समान ही है, असंख्यात गुणा क्षेत्र भी और काल भी बढ़ते चला जाता है, परंतु ये गुणकार वही का वही नहीं है। जैसे द्रव्य में ध्रुव भाग हार है वैसे यहाँ गुणकार वही का वही नहीं है, आगे आगे वाला गुणकार भी असंख्यात गुणा होता है। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, कल की बात हम फिर पढ़ते हैं 45 पृष्ठ पर। हमने देखा था कि दो गुणकार है, एक अवस्थित और एक अनवस्थित। अब यहाँ का पढ़ने के पहले मैं बता दूँ क्या है, द्रव्य के और हमको विकल्प निकालने हैं ना, जघन्य विकल्प, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे आगे आगे विकल्प, तो उसके लिए गुणकार क्या है। तो पहला जघन्य भेद निकालने के लिए हमने क्या किया था, आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा किया था, वहां का जो लोक था ना, लोक को आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा किया तो असंख्यात लोक आ गए। आवली का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात है तो लोक को उसके गुणा करेंगे तो क्या होगा, असंख्यात लोक आ जाएंगे। आगे आगे भी असंख्यात से ही गुणा करेंगे परंतु आगे आगे के असंख्यात का प्रमाण बढ़ता चला जाएगा। तो पहले जो जघन्य भेद है उसके लिए एक बार आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा किया था, लोक को एक बार आवली के असंख्यातवें भाग से गुणा किया था। आगे आगे क्या होगा, दूसरे पॉइंट पर कितने बार गुणा करना, आवली के असंख्यातवें भाग कितनी बार लेना है, दो बार नहीं लेना। अभी यहां से पढ़ेंगे, अभी देखो ये 45 पृष्ठ जो हमने कल पढ़ा था और फिर बाद में सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से भी पढ़ेंगे। ये पृष्ठ संख्या 45 पर ऊपर से आठवीं लाइन, वो हाफ लेटर हाफ, देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र लोक को, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक है उसको अनवस्थित गुणकार से गुणित करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र होता है। ये ऊपर जो हमने देखा था अनवस्थित और अवस्थित क्या है, ऊपर से तीसरी लाइन में देखा था, देखो क्या करना है, आवली का असंख्यातवा भाग लेना है, दो जगह लिखना आवली का असंख्या भाग, एक को कहेंगे हम अवस्थित गुणकार और दूसरे को कहेंगे हम क्षेत्रकाल गुणकार या अनवस्थित गुणकार। अनवस्थित गुणकार ये दो नाम है, एक को ही दो नाम है, एक ही के दो नाम है। यानी क्षेत्र काल निकालने के लिए जो गुणकार है उसी को अनवस्थित गुणकार कहा। तो पहली बार तो उससे गुणा किया, जो अवली का असंख्यात भाग था ना उससे गुणा किया तो क्षेत्र का और काल का भी माप आ गया। देखो काल को निकालने के लिए क्या किया, एक समय कम पल्ल्य था देशावधि का उत्कृष्ट काल, उसको भी अनवस्थित गुणकार से गुणा किया तो परमावधि का जघन्य काल आया। ये तो आसान है, आगे वाले विकल्प जब निकलते हैं तब जरा थोड़ा हमारा घोटाला हो रहा था ना कल, तब जाके ये जघन्य भेद हुआ। तो शलाका यानी परमावधि के जितने भेद है वो पहले भेद की बात हो गई, तो शलाका राशि में से कम कर देंगे हम, बराबर। जितने भेद है उतने बार ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विकल्प निकलेंगे। पुनः अभी दूसरा विकल्प निकलने के लिए क्या है, नीचे से पांचवी लाइन में आ गए हम, ये द्रव्य की बात निकाल दो बीच में से। यानी द्वितीय विकल्प में द्रव्य कितना होगा, जघन्य में जितना होगा उसको ध्रुवाहार से भाग देना, तो उसको भी हम आगे चलते हैं। जघन्य भाव को भी क्या करना, असंख्यात रूप करना, तो आगे वाला विकल्प निकलेगा, उसको भी छोड़ देते हैं। अभी नीचे से दूसरी लाइन तक आना, अभी क्षेत्र निकालना है, दूसरे विकल्प वाला क्षेत्र निकालना है। हमको अभी जघन्य क्षेत्र पता चला, पहले नंबर का क्षेत्र मालूम है, अब दूसरे नंबर पर क्षेत्र कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना, परमावधि के जघन्य क्षेत्र को प्रतिगुणकार से गुणित, प्रतिगुणकार किसको कहा था, अवस्थित गुणकार को, अवस्थित गुणकार या प्रतिगुणकार, तो प्रतिगुणकार से किसको गुणा करना है, अधस्तन विकल्प के गुणकार से गुणित करना। अधस्तन विकल्प का गुणकार कितना था, एक बार आवली का असंख्यात भाग, उसको यहां उससे गुणा किया तो द्वितीय विकल्प होगा। ये बात हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से पढ़ेंगे तभी और ज्यादा क्लियर होने वाली है, पहले यहां से तो पढ़ लेते हैं। यानी यहां कुछ समझ में नहीं आता इतना तो समझ में आएगा। देखो ये कुछ बातें समझ में नहीं आएगी तो छोड़ देना, यानी छोड़ देना नहीं, नाराज नहीं होना, छोड़ देना का अर्थ स्वाध्याय छोड़ देना ऐसा अर्थ नहीं है। 100 बातों में से 25 भी या 20 भी 10 भी ख्याल में आती है, जो अपने ज्ञान में कुछ नहीं आती और कुछ दो बार चार बार सुनने पर आती है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है स्वाध्याय छोड़ना है या क्या करे, अभी इन्फीरियरिटी हो जाती है ना, हमको कुछ नहीं समझता जाने दो, ऐसी बात नहीं है। समझ में आएगी, जरूर आएगी। हाँ, अभी ये सारी बातें क्लियर होने वाली है बिल्कुल। अभी देखो आगे पढ़ दे, पहले यहां से पढ़ते, इसी गुणकार से एक क्षेत्र के लिए भी वही गुणकार है, काल के लिए भी वही गुणकार है। इसी गुणकार से यानी पहले से दूसरा विकल्प निकलता है तब गुणकार दोनों के लिए समान, वो क्या है, अवस्थित गुणकार से अनवस्थित गुणकार को मल्टीप्लाई कर दो, या पहले वाला जो विकल्प के लिए जो गुणकार था उसको अवस्थित गुणकार यानी आवली का असंख्यात भाग से गुणा करो तो आगे वाला गुणकार आएगा। हर बार गुणकार आवली के असंख्यात भाग से बढ़ रहा है, देखो ऐसा है ना, पहले विकल्प से दूसरा विकल्प निकालते समय जो कुछ गुणकार था उसको आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना। अभी वहां ये उसका गुणकार हुआ ना पहले से दूसरे वाला, अब दूसरे से तीसरे वाला जब निकालेंगे तो ये वाला जो गुणकार था उसको और आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना, प्रतिगुणकार है ना अवस्थित गुणकार, नहीं 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 उसकी बात नहीं है, वो बात समझाएंगे सारी, पहले सुनो तो सही। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. हाँ देखो अगले पृष्ठ पर जा रहे. इसी गुणकार से परमावधि के जघन्य काल को गुणित करने पर काल का द्वितीय विकल्प होता है, यानी क्षेत्र और काल के विकल्प के लिए गुणकार वही है. क्षेत्र में तो हम वह लोक से गुणा शुरू किया था, लोक को आगे आगे गुणा करेंगे, और काल का जो बेसिक पॉइंट पल्ले में समय कम वहाँ से गुणकार शुरू किया था, वो भी आगे आगे चलेगा, वो भी असंख्यात समय होते चला जाएगा. फिर शलाका में से और एक कम करना, क्योंकि ये दूसरा विकल्प है. अब उसके बाद तृतीय विकल्प के लिए द्रव्य निकालने के लिए मालूम है द्रुहार से भाग देना, और भाव निकालने के लिए असंख्यात गुणा करना. उन दोनों को हम टाल के आगे बढ़ेंगे, जो हम कल ये सारे पढ़ा है. अब चौथी पांचवी लाइन. अवस्थित गुणकार से गुणित द्वितीय विकल्प के गुणकार से, द्वितीय विकल्प का गुणकार निकालने के लिए, ये उसका विकल्प का भेद निकालने के लिए, कौन सा क्षेत्र वाला, हमने जिस गुणकार से गुणा किया था उस गुणकार को ही आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना है. पूर्व पूर्व भेद को निकालने के लिए जो गुणकार मिला था वहां, उसको और एक आवली के असंख्यात भाग से गुणा करना है. हाँ, उदाहरण देके सारा समझाएंगे. अभी हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका में से पढ़ने वाले हैं. द्वितीय विकल्पभूत क्षेत्र व काल को गुणित करने पर, दूसरे विकल्प का जो क्षेत्र था और दूसरे विकल्प का जो काल था, उसको इस आगे वाले गुणकार से गुणा किया है. एक एक बार और बढ़ता है ना, जैसे यहाँ हमने पहला विकल्प निकालने के लिए एक बार आवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया था. किसको? देशावधि वाले को. तो एक बार तो हुआ ही था. दूसरा विकल्प निकालने के लिए वो एक बार प्लस और एक बार, पहले गुणा करने और एक बार, और फिर उसको भी आवली का असंख्यात भाग, यानी वो तीन बार हो जाएगा. ये कैसे निकालना वो अभी हम पढ़ेंगे. देखो आगे आगे वाला गुणकार बढ़ेगा, इतनी बात अभी ख्याल में आई कि नहीं है. वो कैसा बढ़ना है और उसका माप कैसे निकालना है, उसकी बात हम देखेंगे. जिस राशि से गुणा करना है वो गुणक, जैसे हम भाग हार कहते हैं वैसे गुणकार यानी गुणक, जिस संख्या से गुणा करना है वो संख्या, जिसे गुणा करते हैं उसको कहते हैं गुण्य, और जिस संख्या से गुणा किया जाता है वो गुणक कहो या गुणकार कहो. अब यहाँ हम ये पढ़ेंगे. पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका 551 पृष्ठ निकालना, 551. देखो कल हमने एक बात पढ़ी थी. ये अनवस्थित गुणकार बढ़ते जाता है, ये तो बात समझ में आ गई. अवस्थित गुणकार तो वही का वही है, आवली का असंख्यात भाग. वो एक बार लिया या अवस्थित का अर्थ ही होता है फिक्स. हाँ, अनवस्थित यानी जो फिक्स नहीं है उसको अनवस्थित कहते हैं, और जो फिक्स है वही का वही संख्या है उसको अवस्थित कहते हैं. ख्याल आता है? शब्द से ये ख्याल में आना चाहिए अपने को. तो ये अनवस्थित यानी जो बढ़ते जा रहा है गुणकार, ये आगे आगे बढ़ते जा रहा है. एक बार आवली का असंख्यात भाग किया, फिर और एक बार, अभी ऐसे बहुत से बार लिया और आपस में गुणा किया. तो पहले हम यहाँ पर वो धवला भी निकालना, शंका और समाधान पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ भी कहेंगे. देखो इस प्रकार जाने पर अनवस्थित गुणकार बढ़ रहा है ना, आगे आगे में और बढ़ता चला जाता है. ऐसे जाने पर अनवस्थित गुणकार किस स्थान में घनलोक मात्र होता है, दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प, ऐसे बढ़ते गया है वो, तो वो लोक इतना कब होगा? गुणकार की संग बात चल रही है, गुणकार लोक इतना कब होगा? इस प्रकार पूछने पर उत्तर कहते हैं, देखो आवली के असंख्यातवे भाग के पहले ये हम पढ़ेंगे, फिर छोटी संख्या लेके देखेंगे इसको। आवली के असंख्यातवे भाग के अर्ध छेदों से लोक के अर्ध छेदों को अपवर्तित करके, अर्ध छेद किसे कहना याद है ना? अशोक भाई आपको मालूम है? हाँ, अर्ध छेद किसको कहना? जिस कितनी बार दो संख्या को आपस में गुणा करने पर वो संख्या आती है, दूसरी भाषा में लॉग। हाँ, लॉग कहते ना उसको, तो उसको अर्ध छेद कहते। जैसे 16 है, 16 को कितनी बार, या दूसरी भाषा में दो से भाग देते चले जाओ जब तक एक संख्या नहीं आती। एक बार दो से भाग दिया 8 है, दूसरी बार दिया 4 है, तीसरी बार गया 2 आ गए, चौथी बार गया 1, तो 4 बार 2 लिए ना, तो 4 ये 16 का अर्धच्छेद हुआ। तो 16 का अर्धच्छेद 4 है। हाँ, तो यहां कहते हैं अभी दो संख्या है ऊपर जो हम देख रहे हैं, किस से किसको भाग देना है, तो ऊपर तो लिखना है लोक, लोक के अर्धच्छेद, और उसका भाग देना है आवली के अर्धच्छेद उनसे। लोक के अर्धच्छेद, ये लोक के अर्धच्छेद, और नीचे हम आवली के अर्धच्छेद लिखेंगे, उससे भाग देना। और क्या करना आगे? लब्ध मात्र अध्वान जाने पर जितनी संख्या आई उतने अध्वान यानी उतने भाग काल जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है। दूसरी भाषा में समझेंगे भी, क्योंकि विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि वहां पाई जाती है। अब इसका अर्थ देखने के लिए हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका का आधार लेंगे। बोल ना, देखो आप पढ़ना, वहां समाधान में पढ़ रही हूं। आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करना यानी भाग देना। ऐसा करने पर जो वहां संख्या होगी ना, अर्धच्छेद है, उतनी बार, हाँ उतना स्थान जाने पर यानी वो आपस में गुणा करना पड़ेगा ना, इतने जितने बार दो है उसको आपस में गुणा करो, उतनी बार आगे चले जाना है, उतने बार वो गुणकार लेना है। समझाएंगे अभी फिगर्स, हम अंक संदृष्टि लेकर देखेंगे। जाने पर अनवस्थित गुणकार लोक मात्र होता है। ये लोक संख्या कब आती है उसकी बात चल रही है। अब इसको हमें उदाहरण के द्वारा देखना है, छोटे अंक संदृष्टि जिसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या लेकर हम उसको देखेंगे। देखो 551 पृष्ठ पर 420 गाथा की टीका। यह करण सूत्र है सो सर्वत्र संभव है, ये एक फॉर्मूला हमें दे रहे हैं, या का अर्थ दिखाइए है। इच्छित राशि कहिए विवक्षित राशि का प्रमाण। अभी यहां विवक्षित राशि यानी अभी हमने लोक मान ली है बराबर, तो विवक्षित राशि का प्रमाण। अभी ये विवक्षित राशि कैसे आती है, तो कोई अन्य राशि देय राशि का आपस में गुणा करने पर विवक्षित राशि आती है, ऐसे हम मानेंगे बराबर। तो विवक्षित राशि का प्रमाण, ताके जेते अर्धच्छेद होई। अभी हमने लोक के अर्धच्छेद देखे तिनी को, देय राशि के जेते अर्धच्छेद होई। अभी देय राशि यानी हमने यहाँ अवली का संख्या तो भाग लिया, उसके अर्धच्छेद है उसका भाग देना, तिनी का भाग दिए जो प्रमाण आवे। ऊपर लोक के अर्धच्छेद है, नीचे आवली के असंख्यात्वे भाग के अर्धच्छेद है, भाग देने पर यहाँ जो संख्या आएगी, बराबर, किसका विरलन करना उसको एक 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 लिख देना, हाँ, लब्ध का विरलन करना, और हर विरलन पर कौन सी संख्या देना, देय राशि को देना। देखो, तीन को देय राशि के अर्धछेद हुई तीन का भाग दिए जो प्रमाण आवे, तीस का विरलन कीजिए, विरलन कीजिए ने एक एक जुदा स्थापिए। जैसे चार का विरलन करना है ने क्या, एक 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 चार बार लिखना। तो अभी इसको हमने क्या किया, लोक के अर्धछेद डिवाइडेड बाय आवली के असंख्यात हुए भाग के अर्धछेद, जो संख्या आएगी वहां संख्या है ने, मान लेते ऊपर दस बार दो दो आए या चार बार दो दो आए, बेदुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, तो सोलह को विरलन करना है हमको, एक 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 सोलह बार लिखना है, बराबर। फिर क्या करना, एक एक जुदा स्थापिए, तीस एक एक के स्थान के जिस देय राशि के अर्धच्छेदिनी का भाग दिया था तीस ही देय राशि को मांडी, जिस देय राशि अभी हमारी यहाँ फिक्स है ना अवली का संख्या भाग, तो जितनी ऊपर संख्या आई थी उतनी बार देय राशि को लिखकर परस्पर गुणन कीजिए, विवक्षित राशि का प्रमाण होई तो वो लोक आएगा। अभी हम लोक के बदले 256 लेते हैं, जरा लोक को छोड़ दिया, हाँ तो जरा लंबा सांस ले सकते ना, नीचे देय का अर्धच्छेद और ऊपर जो राशि है उसका अर्धच्छेद। देखो, हमें तो ये प्रश्न पूछा गया था कि ये जो देय राशि ने अभी हमने अवली का असंख्यात भाग लिखा है, तो अवली का असंख्यात भाग कितने बार आपस में गुणा करेंगे तो लोक आएगा, ये अपनी अपनी भाषा में। तो उसके लिए क्या करना है, अभी लोक के बदले हम 256 लेते हैं और अपनी देय राशि हम 16 मानते हैं, 16 गुणा 16 256 आते हैं ना, तो हमको ये 16 को कितनी बार गुणा करने पर 256 आएंगे, आठ बार, 16 बार, अभी वो निकालेंगे हम। आप ये क्या, ऐसा क्या कर रहे, मैंने लिखा 16 को कितनी बार आपस में गुणा करने पर 256 आएंगे, हाँ यानी दो बार लिखना पड़ेगा ना, दो बार लिखना पड़ेगा उसको। देखो अभी हम निकालेंगे, हमको मालूम है 256 के अर्धच्छेद कितने हैं, इसको दो से भाग देते जाओ कितने बार जाएगा भाग, हाँ आठ बार, 16 का अर्धच्छेद 4 है हमने देखा था है ना, तो 256 का 8 बार होता है, तो इसके अर्धच्छेद कितने हैं, 8 है और 16 के अर्धच्छेद है 4, बराबर। तो कितनी आएगी संख्या, 8 बार भागीले 4 2 आएगी ना, तो ये 2 को विरलन करना। हमने क्या देखा था, लोक के अर्धच्छेदों को वो आवली के असंख्यात भाग से के अर्धच्छेदों से डिवाइड करना, जो संख्या आएगी उसको विरलन करना। अब ये दो संख्या को विरलन करो यानी दो बार एक एक लिखो। अभी ये जो नीचे की संख्या थी जिसके अर्धच्छेद हमने यहाँ लिखे थे, उस संख्या को इसके टॉप पर, ये देय राशि हमारी, तो ये मूल राशि आएगी, वही की वही है। अभी कौन सी भी बात देखो, ऊपर और नीचे, अगर अगर आपको मालूम नहीं इतनी बार गुणा करने से ये राशि आती है, अभी 16 को कितनी बार गुणा करेंगे तो पनट्ठी आएगी, देखो 16 गुणा 16 256 और 256 गुणा 256 पनट्ठी, बराबर, चार बार आती है ना, तो अभी ऊपर हमें पनट्ठी लिखेंगे और नीचे 16 के अर्धच्छेद, पनट्ठी के अर्धच्छेद कितने होते हैं, 16, पनट्ठी ने 65,536, उसके अर्धच्छेद 16 के अर्धच्छेद 4, 16 को 4 से भाग दिया तो आ गए 4, 4 का विरलन करो और हरेक के ऊपर 16 दे दो और उनका आपस में गुणा करो तो मूल राशि आएगी। तो अभी हमें मालूम है कि आवली के असंख्यात भाग का गुणा करते जाओ, वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग, तो जाके लोक संख्या आने वाली है। तो कितने बार उसको लेंगे तो लोक आएगा? तो कहते लोक के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय आवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेद, जो संख्या आएगी उतनी बार आवली के असंख्यात भाग को रखकर आपस में गुणा करो तो लोक आएगा। बस ये अपने पंडित टोडरमल जी की कृपा, ये ऐसे अंक संदृष्टि लेकर समझाते हैं। यही बात यहाँ 251 पर लिखी है, अभी हम वहां से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा समझा है हमें, यही उदाहरण उन्होंने लिया है 256 और 16 का। हाँ, कितनी भी बड़ी संख्या निकालनी है जो देय राशि का गुणा करके आती है ना, हमें जो मालूम है ऐसी संख्या को निकालना है, कितनी बार संख्या से गुणा करेंगे तो निकलेगा, तो ये इस तरह से आती है। सभी राशियां देय राशि से गुणित करने पर आएगी ऐसी बात नहीं है, है ना? हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, अभी हमने देखा था ना लोक के अर्धच्छेद, अभी हमने देखा था लोक के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय वो आवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेद, जो संख्या आएगी उतनी बार आवली का असंख्यात भाग लिखकर आपस में गुणा करना तो लोक संख्या आएगी। जो जिस देय राशि को गुणा करने पर वो संख्या आती है तो कितनी बार करना है उसका प्रमाण ऐसा निकल जाता है। ये बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे करण सूत्र में उन्होंने बिठा दिया है। नहीं नहीं उसकी बात नहीं, देखो यहाँ क्या है, जैसे हमको पल्ले निकालना है तो आवली का असंख्यात बार कितनी बार लिखो तो पल्ले आएगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं 251 में तीसरा पैराग्राफ, ऐसे ही अलौकिक गणित विषय विवक्षित राशि, अभी अन्य अन्य राशियाँ निकालनी हमको, पल्ले प्रमाण हो। देखो पल्ले भी राशि द्विरूप वर्ग धारा में आती है और आवली भी द्विरूप वर्ग धारा में है, तो आवली को कितनी बार, आवली के असंख्यात भाग को कितनी बार आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो पल्ले के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, पल्ले के अर्धच्छेद डिवाइडेड बाय आवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेद, जो संख्या आएगी उतनी बार आवली का असंख्यात भाग लिखकर आपस में गुणा करेंगे तो पल्ले संख्या आएगी। तो ये कहाँ कहाँ लागू होती है, तो पल्ले का प्रमाण अथवा सुचंगुल प्रमाण, अभी सुचंगुल भी उसी राशि में नहीं, वो तो नीचे इसके राशि में आते हैं ना, घन द्विरूप घन धारा में आता है, नहीं सुचंगुल उसी धारा में आता है, श्रेणी नीचे आएगी, जगत श्रेणी नीचे की लाइन में आएगी। देखो सुचंगुल प्रमाण व जगत श्रेणी प्रमाण, ये जगत श्रेणी है वो द्विरूप घन धारा में आती है और लोक है वो घना घन धारा में आता है, घन का घन आता है वह लोक प्रमाण जो होई ताके जेते अर्धच्छेद होई, यही फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा। पल्ले की बात निकालनी तो पल्ले के अर्धच्छेद ऊपर लिखना, लोक के अर्धच्छेद निकालने तो लोक को ऊपर उसके अर्धच्छेद ऊपर लिखना। तीन को देय राशि जो आवली का असंख्यात भाग ताके जेते अर्धच्छेद होई तिनिका भाग दिए जो प्रमाण आवे तीन का विरलन करी। जैसे हमने पनट्ठी के अर्धच्छेद कितने देखे 16 के अर्धच्छेद 4, 16 को 4 का भाग दिया 4 आए, 4 बार 16 लिखा। विरलन करना है ने एक एक करी बिखेरी, बहुरी एक एक के स्थान की एक एक आवली का असंख्यात्वा भाग मांडी परस्पर गुणन किए विवक्षित राशि पल्य वा सुच्चंगुल वा जगश्रेणी वा लोक प्रमाण हो है। यही फॉर्मूला जहाँ कहाँ उस दे राशि के गुणकार से आती है वहाँ यही फॉर्मूला फिट होगा। कितनी बार लेना है उसका यहाँ अपने को उत्तर मिलता है। इतनी बात तो ख्याल में आई ना। हाँ, अब आगे क्योंकि प्रश्नकार ने पूछा था कितनी बार उसको लेंगे तो लोक आएगा। अनवस्थित गुणकार बढ़ते जाता है। अवस्थित गुणकार यानी आवली का असंख्यात्वा भाग, पहले एक बार लिया था फिर और दो चार बार लिया, चार बार लिया, दस बार लिया, जो कुछ है, तो कितने स्थान आगे चलकर वो लोक जितना हो जाएगा। अवस्थित अनवस्थित की बात है क्योंकि अनवस्थित है वो बढ़ रहा है हर बार। हमने देखा पहले से दूसरे विकल्प में जितना गुणकार था आगे और आवली के कितने ही असंख्यात्व भाग से उसको गुणा किया, आगे और भी कितने ही से गुणा किया, तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते वो लोक प्रमाण कहाँ होगा, ये प्रश्न था। उसका ये जवाब आ गया कि दोनों के अर्धच्छेदों का भागाकार करना, जितनी संख्या आएगी उतनी बार आवली के असंख्यात्व भाग से गुणा करो तो ये लोक संख्या आएगी। अभी इसका अर्थ मैं समझाती हूँ। तीसरे लाइन समाधान के तीसरे लाइन में, क्योंकि विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकारों की, विरलन राशि मात्र अवस्थित गुणकार है। अभी हमने 256 को 16 के अर्धच्छेद, 256 के अर्धच्छेद 8, 16 के अर्धच्छेद 4, उसका भागाकार किया तो आए 2, तो विरलन राशि 2 आई। विरलन राशि मात्र ने 2 बार अवस्थित गुणकार ने 16 का गुणकार करने से, 2 बार करना है 16 को 2 बार लिखकर आपस में गुणा करना, अन्योन्य अवस्थ राशि वहां पाई जाती है। इतनी बार आपस में गुणा करके जो संख्या आती है उसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। हाँ, उतनी बार आपस में गुणा करना। अब आगे धवला में पढ़ रहे हम, वहां से लेकर ऊपर सर्वत्र। अभी आवली के असंख्यात्व असंख्यात्वा भाग हमने इतनी बार लिया, अभी लोक प्रमाण आया गुणकार, उसके आगे का विकल्प निकालने के लिए वो लोक भी असंख्यात गुणा हो जाएगा ना। अभी क्योंकि अनवस्थित है वो असंख्यात गुणा बढ़ता ही चला जाता है, तो इसके वहां से लेकर ऊपर सर्वत्र अनवस्थित गुणकार असंख्यात लोक मात्र होता है। पहले बढ़ते 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 लोक तक गया और उसके आगे वो असंख्यात लोक, असंख्यात लोक, वो भी असंख्यात गुणा वाला असंख्यात लोक होता चला जाएगा। गुणकार की ही बात चल रही, गुणकार की ही बात चल रही है यहाँ। देखो क्या कहा, अनवस्थित गुणकार कहा ना यहाँ पर। अनवस्थित गुणकार पहले लोक जितना हुआ था, प्रश्न क्या था अनवस्थित गुणकार लोक कहाँ होता है, उसका हमने वो अंक संदृष्टि के द्वारा देखा स्वरूप। अब कहते उसके आगे क्या होगा, अनवस्थित गुणकार तो बढ़ ही रहा है तो वह असंख्यात लोक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विकल्प के प्रति वह अवस्थित गुणकार से गुणिच्यमान है। क्या कहते हैं, अगला अगला विकल्प निकालना है। अभी किसी एक पॉइंट पर गुण अनवस्थित गुणकार एक लोक हुआ तो वो एक लोक को आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे तो असंख्यात लोक हो गया, आगे उसको और आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करेंगे, अगले अगले के लिए पहले का गुणकार का और आवली के असंख्यात विभाग से गुणा करना है, इसीलिए उसका नाम क्या है अनवस्थित गुणकार। हर बार आवली के असंख्यात विभाग से वो बढ़ रहा है, इतने गुणित हो रहा है, खाली बढ़ रहा नहीं, केवल बढ़ रहा है कहेंगे तो उसमें हम प्लस करेंगे, प्लस नहीं करना, उससे गुणित करना है। इस प्रकार परमावधि के द्विचरम विकल्प तक ले जाना चाहिए। द्विचरमणीय लास्ट बट वन, अंतिम निकालने के लिए वही है प्रोसेस, परंतु वह हमको समझाना है ना अभी, परमावधि का उत्कृष्ट वहाँ बताएंगे। अब ये जो हमने अनवस्थित गुणकार कैसे बढ़ता है उसके लिए 552 पृष्ठ निकालना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। अभी हमको किसी विशिष्ट भेद में, कोई भी भेद है, 10वां है, 15वां है, 40वां है, 1000वां है, परमावधि का भेद, तो उसमें गुणकार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ कोई हमें सूत्र बता रहे। अनवस्थित अवस्थित जो कुछ गुणकार है वो कितना है, तो देखो देय राशि यानी कितनी हमें लिखी थी, आवली का असंख्यात भाग, उसके अर्धच्छेदों का भाग लोक के अर्धच्छेदनों छेदनी को दिए जो प्रमाण होई ताका, यानी उस जो प्रमाण है ना उसका, विवक्षित पद का संकलित धन को भाग दिए। विवक्षित पद यानी हमने तीसरे नंबर का अगर हमको निकालना है, तीसरे विकल्प की बात करनी है, तो तीन संख्या है ना, तो उसका संकलित धन निकालना। संकलित धन यानी क्या, ये हम भूल गए हैं। हाँ देखो, पहले संख्या तो हम एक ही है, दूसरी संख्या का संकलित धन क्या है, एक और दो की टोटल करना, 1+2=3 होता है। तीसरा विकल्प है तो तीसरे का संकलित धन कितना है, 1+2+3 6 हो जाएगा। चौथे नंबर पर संकलित धन कितना होगा, 1+2+3+4 एक और दो तीन हुए, 3 3 6 6 और 4 10। पांचवे के लिए 15। ये जो संकलित धन है उसको, ये जो हमने देखा था ना, जैसे हमने विरलना से वो निकाला कुछ, इतनी बार करना है देय राशि, तो ये जो विवक्ष विरलना का जो प्रमाण है ना, देय राशि विरलना का नहीं, देय राशि के अर्धच्छेदों का भाग उसको देने पर जो संख्या आई, 256 के उदाहरण में हमने दो संख्या आई थी, उसका विवक्षित पद के संकलित धन को भाग देना है। जैसे चौथा पॉइंट है, 4 का संकलित धन कितना है, 10, तो 10 को 2 का भाग देना, बराबर जो प्रमाण आवे तितना लोकमात्र परिमाण मांडी, परस्पर गुणन किए जो प्रमाण आवे, सो विवक्षित पद विषय क्षेत्र व काल का गुणकार जानना, उतने लोक को रखकर परस्पर गुणा करना है। ऐसे ही परमावधि का अंत भेद विषय गुणकार जानना। अब इसके लिए अंक संदृष्टि बता रहे हैं। देय राशि यहाँ 16 है, यहाँ क्या लिखा है, 64 का चौथा भाग, ये 64 से कुछ लेना देना नहीं है, समझाने के लिए वो 64 का चौथा भाग यानी 16, ये हमारी देय राशि जो पहले भी हमने देखी थी, उसके अर्धच्छेद 4, तिनका भाग 256 के अर्धच्छेद 8 तिनको दीजिए, तब 2 पाया, हमने पहले देखा था 256 के अर्धच्छेद कितने, 8 है, उसको देय राशि 16 के अर्धच्छेद 4 का भाग देंगे तो 2 संख्या आई, बराबर। तिनका भाग विवक्षित स्थान तीसरा, अभी हम मैंने चौथा लिया था, अब यहाँ तीसरा स्थान लेकर समझा रहे, तीसरा स्थान है तो तीसरे के लिए संकलित धन संकलन धन कितना होता है, हाँ तो तीसरा उसका संकलित धन 6, उसके नीचे के लाइन में आया ना, वो संकलित धन निकालने के लिए एक सूत्र बताए उसको अभी भूल जाओ, तीसरे का संकलित धन कितना है, 6 नीचे के लाइन में, तीन को दीजिए, 6 को 2 का भाग दिया तो कितने आए, 3 आए, सो 3 जाएगा 256 मांडी, अभी देय राशि नहीं मांडना है उतनी, लोक को उतनी बार लिखना है, हाँ लोक को लिखना है, तो 256 को उतनी बार लिखना, परस्पर गुणन किए जो प्रमाण होई, सो इस तीसरा स्थान विषय गुणकार जानना, क्योंकि हमने लोक को गुणा करके आए थे ना पहले भी। अब यहाँ कथन है सो कहिए हैं, यहाँ कथन है ने जो मूल में जो कथन है उसको अभी बता रहे हैं, जो अवलिका असंख्यात्व भाग वगैरह जो है ना उसको अब बताएंगे। पहले ये समझ में आया, संकलित धन कैसा निकालना उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो अभी बीच में घोटाला नहीं करेंगे। छोटे फिगर्स में तो हम संकलन धन वो कैसा है, वो संकलित धन वो हम तो निकल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। जैसे पाँच का संकलन धन क्या है, तो 1+2+3+4+5, यहाँ तक तो समझे ना हम। अभी ये मूल राशि पर घटाएंगे, देय राशि आवली का असंख्यात्वा भाग, ताके अर्धच्छेद राशि, जो आवली के अर्धच्छेद निमित्त से भागारभूत असंख्यात के अर्धच्छेद घटाए जो प्रमाण रहे तितना जानना। या और एक बात नहीं समझाई, देखो हमें आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेद निकालना है। जैसे 64 के 16 चौथे भाग 16 उसके हमको अर्धच्छेद निकालने हैं, यही है ना। आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आवली के अर्धच्छेदों में से असंख्यात के अर्धच्छेद माइनस करना। जैसे 64 के अर्धच्छेद कितने आते हैं, भाग देते जाओ दो से, कितनी बार देना पड़ेगा, 6 बार। 64 के अर्धच्छेद 6 है ने, 6 बार दो दो लिखना पड़ेगा ना, ये 64 के अर्धच्छेद होते हैं। और 4 के अर्धच्छेद 2, एक दो तीन चार पांच और एक 6, 6 बार दो दो लिखो ऊपर और नीचे 2 बार दो दो लिखो। अब संख्या हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार दो दो रहे, 4 बार। यानी अर्धच्छेदों का और अर्धच्छेदों का भागार होता है तो उसमें जो संख्या है ना अर्धच्छेदों की, कितनी बार दो दो लिखा उसको डायरेक्ट माइनस करो तो वही संख्या आती है। तो 64 के अर्धच्छेद 6, 4 के अर्धच्छेद 2, तो 6 में से 4 गए तो सॉरी 6 में से 2 गए तो 4 रह गए। तो हम कहे 64 का चौथा भाग जो 16 है उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, 4 हो गए। क्या किया हमने, 64 के अर्धच्छेदों में से 4 का अर्धच्छेद माइनस किया। ये यह 64 लेने का प्रयोजन ही यही था कि उनको यह आपको फॉर्मूला बताना था। हमें आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेद निकालने हैं, आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात इसके अर्धच्छेद निकालने हैं तो क्या करेंगे, आवली के अर्धच्छेदों में से असंख्यात के अर्धच्छेद माइनस करेंगे, वही आएगी ना, वही आएगी। ये भागाकार में लेना है हमको, आवली के असंख्यातवे भाग के जितने अर्धच्छेद है उससे लोक के अर्धच्छेदों को भाग देना है। अभी ये कैसा निकालना है वो समझाए उन्होंने, देखो। फिर देय राशि आवली का असंख्यातवा भाग, जिसके सामने पुस्तक नहीं उसको नहीं समझे तो फिर पूछना, हा? उसके अर्धच्छेद राशि निकालनी है, कौन से आवली के असंख्यातवे भाग की अर्धच्छेद राशि निकालनी है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 64 के चौथे भाग की हमको अर्धच्छेद निकालने हैं तो क्या कि हमने 64 के अर्धच्छेद निकाले 6 और 4 के अर्धच्छेद निकाले 2, 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गए। तो 64 का चौथा भाग 16 के अर्धच्छेद कितने हैं, तो 4 है, ऐसे हमने निकाला। छोटी संख्या से हमको समझने में आसान है ना। वैसे अभी आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेद निकालना है, आवली के अर्धच्छेद में से असंख्यात के अर्धच्छेद घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो आवली के असंख्यातवे भाग के अर्धच्छेद की संख्या आएगी। यहां तक समझे, अब आगे। सो सो ऐसे इस देय राशि के अर्धच्छेद, देय राशि कौन सी है, अवलिका असंख्यात भाग, उसके अर्धच्छेद संख्यात घाटी परिता संख्यात का मध्य भेद प्रमाण हो है, तो ये अर्धच्छेद कितने हैं? आवली संख्या कैसे आती है मालूम है क्या? एक आवली में कितने होते हैं? जघन्य युक्ता संख्यात, तो जघन्य युक्ता संख्यात संख्या कैसे आती है? जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात बार लिखो, परस्पर गुणा करो, तो जघन्य युक्ता संख्यात यानी एक आवली आती है, बरोबर। अब ये जो आवली के या आवली के असंख्यात भाग के अर्धच्छेद कितने आते हैं, कोई विशिष्ट मध्यम, इतने बार जघन्य परिता संख्यात को आपस में गुणा किया, कोई मध्यम भेद आता है उसमें, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने परिता संख्यात की बात चल रही है, युक्ता संख्यात की नहीं, आवली से छोटे ना सारे, उसका कोई एक विशिष्ट मध्यम भेद आता है। हाँ, अभी हमने जो देय राशि देखी, आवली का असंख्यात भाग वाला जो देय राशि है उसके अर्धच्छेद कितने हैं, तो मध्यम परिता संख्यात का कोई एक भेद है, उसको क्या कहा, संख्यात घाटी परिता संख्यात का मध्य भेद प्रमाण हो है। अब उसका भाग यानी जो कुछ यथा योग्य राशि आती उसका भाग लोक प्रमाण के जेते अर्धच्छेद होई तीन को दीजिए, ये हमने गणित जो देखा है उसी की बात चल रही है, 256 के अर्धच्छेदों को 16 के अर्धच्छेदों को भाग दे रहे हम, ऐसा समझो। तो लोक के अर्धच्छेदों को ये देय राशि आवली का असंख्यात भाग के अर्धच्छेद उसका भाग दे रहे अभी, जितना प्रमाण आवेगा ताका भाग, अब उसका भाग कहाँ देना है, हमने जिस नंबर का विकल्प की बात कर रहे हैं ना परमावधि के, तो अभी जो संख्या आई उसका भाग विवक्षित जो कोई परमावधि ज्ञान का भेद है उसका जो संकलित धन होई ताको दीजिए, हमें तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, तो तीसरे के तीन का संकलित धन 1+2+3 6 आता है, तो 6 को हमने अपने गणित वाला 2 का भाग देंगे। यदि चौथे विकल्प की बात करना है तो उसका 4 का संकलित धन कितना होता है 10, तो 10 को हम 2 से भाग देंगे। 2 क्यों? क्योंकि 256 के अर्धच्छेद को 16 के अर्धच्छेदों से भाग देने पर 2 संख्या आई थी, इसलिए 2 लिया वहां पर। अभी हमने जो देय राशि के अर्धच्छेदों से लोक के अर्धच्छेदों से भाग देकर जो संख्या आई थी उस संख्या से हमें जो कोई विकल्प निकालना है, चौथा पांचवा दसवां जो कुछ है उसको भाग देना है, जो प्रमाण आवे कितना लोक मांडी उतनी बार लोक संख्या लिखना और आपस में गुणा करना, जो प्रमाण आवे सो तिस भेद विषय गुणकार जानना, उस भेद में कौन सा गुणकार है उतने लोक आपस में गुणा करने पर, असंख्यात लोक असंख्यात लोक बात आई ना, इसकी बात चल रही है। हाँ, अनवस्थित अवस्थित जो सब मिलकर जो वहां का गुणकार होगा उतना उस वहां का, उसके आगे ये बात होगी, वहां तो बताए ना इतनी बार उसके अर्धच्छेद को इससे भाग दे, उतनी बार अवली का असंख्यात भाग लिखा था, वो लोक कब आता है उसकी बात की थी, लोक आने पर आगे क्या होगा, असंख्यात लोक होगा, हमने पहले पढ़ा था, इसके आगे के सभी विकल्प असंख्यात लोक है, तो कितनी बार लोक लेना उसमें, ये संख्या उतनी बार आएगी, अर्धच्छेदों को अर्धच्छेद से भाग देने पर वो भी संख्या असंख्यात में आती है ना, तो असंख्यात बार लोक लिखकर आपस में गुणा करना, वो वहां का गुणकार होगा, इस गुणकार करी, अब ये जो गुणकार आया उससे देशावधि का मूल में वो लोक को ही पकड़ना, लोक को उससे गुणा करना, देशावधि का उत्कृष्ट लोक प्रमाण क्षेत्र को गुणे जो प्रमाण हुए 130 भेद विषय क्षेत्र का परिमाण जानना और वही गुणकार से पल्य माइनस एक समय को गुणा करेंगे तो काल का प्रमाण आएगा। गुणकार दोनों के लिए वही है। अभी हम फिर मूल पुस्तक में आते हैं। भाव तो असंख्यात गुणा होता है यथा योग्य, वो तो हमने देखा था। द्रव्य और भाव में नहीं, क्षेत्र और काल के लिए ये है। स्टार्टिंग में हमने अवली का असंख्यात विभाग से गुणा किया था, किसको? लोक को। अभी कितनी बार लोक, जहां तक लोक आता है, लोक के बाद क्या होगा? तो लोक गुणा लोक होगा, गुणकार भी लोक गुणा लोक गुणा लोक गुणा लोक होगा। वो कितने बार लेना? तो उस पॉइंट पर जितना संकलन धन होगा उतना, उस संकलित धन को विरलन राशि से भाग दिया था हमने, जो संख्या आती है उतनी बार लेना है। वो विरलन राशि भी असंख्यात होती है। ये क्षेत्र कितने फास्ट वो बढ़ता है उसको यहां बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 46 पृष्ठ पर अंतिम लाइन। अब अंतिम विकल्प को कहते हैं, अंतिम विकल्प का अर्थ है परमावधि का उत्कृष्ट। क्या? सेकंड लास्ट। अंतिम का अर्थ होता है लास्ट। परमावधि के द्विचरम द्रव्य को अंतिम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्विचरम को अभी आगे बढ़ाना है तो द्रव्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्विचरम को ध्रुवार से भाग देंगे, बराबर। परमावधि के द्विचरम द्रव्य को अवस्थित विरलना से समखंड कर दे करके देने पर अंतिम द्रव्य विकल्प होता है। द्विचरम को ध्रुवहार से भाग देने पर चरम का द्रव्य आता है। ये परमावधि की बात चल रही है अभी। द्विचरम भाव को, अभी भाव की अपेक्षा कितना लेना पड़ेगा? तो द्विचरम भाव को जितना था उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर परमावधि का अंतिम भाव होता है। द्रव्य और भाव की बात समझ में आ गई। अब क्षेत्र और काल की बात करेंगे। परमावधि के असंख्यात लोक मात्र द्विचरम अनवस्थित गुणकार को, ये गुणकार है उससे हमको लोक को ही गुणा करना है। अनवस्थित गुणकार बढ़ते चला जाता है और उसे हम मूल जो लोक था उसको और गुणा करना है। असंख्यात लोकों से लोक को गुणा करेंगे, वो भी और असंख्यात बढ़ेगा आगे आगे। तो द्विचरम अनवस्थित गुणकार को अन्य आवली के असंख्यात विभाग से गुणित, उस गुणित राशि से द्विचरम क्षेत्र और काल को गुणित करने पर, द्विचरम में जो क्षेत्र का और काल का प्रमाण आया था उसको किससे गुणा करना? वहां का अनवस्थित गुणकार पहले विकल्प का मल्टीप्लाइड बाय एक बार आवली का असंख्यात विभाग, और उससे इसको गुणा करना। और हाँ, द्विचरम क्षेत्र और काल को तो अंतिम आएगा। तो क्या होगा? परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल होता है। तो हर विकल्प के लिए हमने शलाका राशि में से एक एक घटाते चला जाएंगे गए थे। अब यहां पर शलाका राशि समाप्त होगी। शलाकाओं में से एक रूप करने पर सब शलाकाएं यहां समाप्त हो जाती है, क्योंकि यही अंतिम भेद है। इतने अलग अलग विकल्प परमावधि के थे, है ना? क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से, क्षेत्रोपम अग्नि जीव का भी याद है क्या था? अग्निकायी जीवों के अवगाहना के जितने भेद है, विकल्प है, उसको अग्निकायी जीवों की संख्या से गुणा करते हैं। जो संख्या आती है उसको कहते हैं क्षेत्रोपम अग्नि जीव। क्षेत्र ने अवगाहना की उपमा दी, उसे गुणित किया उसको क्षेत्रोपम अग्नि जीवों से। देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की खंडन और गुणन रूप खंडन किसको करना किया हमने, द्रव्य निकालने के लिए उतनी बार खंडन किया था, भाग दिया था, भाव में उतनी बार गुणा किया था, क्षेत्र और काल निकालने के लिए भी उतनी बार, क्योंकि शलाका जितनी उतनी बार किया ना, गुणन रूप बार शलाका उनसे साधे गए, यानी उतनी बार शलाका से हमने खंडन किया या गुणन किया, उसके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ क्या, द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव को उत्कृष्ट परमावधि जानता है, यह सिद्ध हुआ। इसीलिए देशावधि को पूर्व में नमस्कार किया है, पश्चात परमावधि को, क्योंकि परमावधि के सारे ही विकल्प निकालने के लिए उसका बेस क्या था, उत्कृष्ट देशावधि, उसको इतनी बार खंडित किया द्रव्य के लिए और इतनी बार गुणन किया भाव के लिए और क्षेत्र काल के लिए, वो गुणकार का स्वरूप क्या है वगैरह वो हमने विस्तार से देख लिया है। इस तरह से यहाँ पर परमावधि की बात समाप्त तो होती है। मुझे लग रहा था मैं ये कैसे समझाऊं, गुणकार बढ़ता चला जाता है, इतनी बात ख्याल में आई, बस इतना ही है, और उसके कितने भेद है ये भी ख्याल में आता है, क्योंकि अग्नि का एक जीवों की संख्या निकालते निकालते हमें पसीना छूटता है, क्योंकि 3.5 बार शलाका त्रय स्थापित करके उसकी वर्ग शलाका आती है, फिर उसकी संख्या तो मूल बहुत बड़ी है। हाँ वो तो शलाका उसकी वर्ग शलाका थी, हाँ। हमको असंख्यात का पता ही नहीं ना कितनी असंख्यात है। हाँ अंगुल इतना है, सुचंगुल लोक कितना बड़ा है, इतने समय इतने प्रदेश इतने क्षेत्र तक जानते हैं, इतने काल तक जानते हैं, क्या है? हाँ अवधि ज्ञान की बात चल रही, नहीं नहीं उसका वो देशावधि है और वो को अवधि की लिमिट 7 द्वीप समुद्र तक है, उससे ज्यादा नहीं हुई, को अवधि वाला उससे ज्यादा नहीं जानता। अब ये परमावधि की बात यहाँ समाप्त होती है। ज्ञान मार्गणा में पहले हमने इसको देखा, आप आई थी ना ज्ञान मार्गणा, अभी उसमें ये आसान लगेगा, अभी समय ज्ञान चंद्रिका, तब वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, 47 पृष्ठ पर, नमो सवो ही जीर्णानम, सर्वावधि जिनों को नमस्कार हो, पहले देशावधि को कहा, फिर परमावधि को, अभी सर्वावधि को, विश्व और कृष्ण ये सर्व समानार्थक शब्द है, ये कुछ गलती है यहाँ पर, ऊपर पढ़ेंगे प्राकृत में, सर्वम विश्वम कृष्णम अवधिर मर्यादा यस्य स बोध सर्वावधि, सर्व कहो विश्व कहो या कृष्ण कहो एक ही बात है। कृष्ण शब्द कहीं सुना है? नहीं सुना? हाँ क्या कहना चाहते फिर उसका? मैं कृत्स्न ही बोला मैंने, कृत्स्न, त स और न, कृत्स्न का अर्थ क्या होता है? हाँ नहीं याद, बताया नहीं यहाँ। पहले सुना है ना, कृष्ण कर्म जिसने विनाश किया, ऐसा आया था पहले कहीं शब्द, यानी संपूर्ण कर्मों का जिसने नाश किया है, भक्तांबर में कहा है? नहीं देखो, ये विश्व कहो कृष्ण कहो या सर्व कहो एक ही बात है, सर्वावधि कहा है ना अभी यहाँ, ऐसा हाँ सर्व, ये समानार्थक शब्द है, ये सर्व शब्द पहले लेना, विश्व कृष्ण और सर्व ऐसा है, ये समानार्थक शब्द है, ये हमें समझाने के लिए समानार्थक शब्द है कहा, ऊपर प्राकृत में क्या कहा, सर्व विश्व कृष्ण, जिसकी मर्यादा है, यानी सर्व जिसकी मर्यादा है, ऐसा वो अवधि, वो सर्वावधि कहा, सर्व जिसकी मर्यादा है ने, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ है ने, पुद्गल में सब कुछ, नहीं तो सब में सभी द्रव्यों को नहीं लेना। हाँ हाँ देखो विश्व और कृष्ण, वैसे सर्व ये समानार्थक शब्द है, तीनों का अर्थ एक ही, आप सर्व कहो विश्व कहो या कृष्ण कहो, सर्व है मर्यादा जिस ज्ञान की, वह सर्वावधि है। यहाँ सर्व शब्द समस्त द्रव्य का वाचक नहीं ग्रहण करना चाहिए, सर्व में वो जीवादि सर्व नहीं समझना, अकेले पुद्गल की ही बात हो रही है, क्योंकि जिसके परे अन्य द्रव्य न हो उसके अवधिपना नहीं बनता। क्या कहते, अवधि का अर्थ क्या है, मर्यादा। जो छह द्रव्यों को सब कुछ जानता है, अभी उसमें मर्यादा काहे की कहना, वो तो अमर्यादित केवल ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ जानता है उसमें, ये इतने तक जान तक कैसे लगेगा, उसमें तक नहीं लगता ना, सब कुछ जानता है कहेंगे तो यहां तक जानता है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सर्व शब्द सभी द्रव्यों के लिए नहीं है, किंतु सर्व शब्द सबके एक देश रूप रूपी द्रव्य में वर्तमान ग्रहण करना चाहिए, यानी रूपी द्रव्य में रहने वाला वो ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सर्व रूपगत है अवधि जिसकी, क्या कहते हैं, इसकी अवधि क्या है, रूपगत तक इसकी मर्यादा है, रूपगत यानी पुद्गल को छोड़कर बाहर उसकी मर्यादा नहीं है, इसकी लिमिट कहाँ तक है, रूपी तक है, परंतु वो रूपी में सभी लिया, सभी रूपी लिया, यानी परमाणु तक को जानता है ना, जितने पुद्गल है वो सबको जानता है, इसलिए वो सर्व है ने रूपी के लिए सर्व शब्द लगा, सर्व रूपगत है अवधि जिसकी, यानी रूपी में सबको जानता है, ये सर्व रूपगत अवधि हुई उसकी। इस प्रकार संबंध करना चाहिए। अथवा जो आकुंचन और विसर्पणादिकों को प्राप्त हो वह पुद्गल द्रव्य सर्व है। सर्व शब्द से पुद्गल शब्द बताना चाहते हैं, क्योंकि थे ना पूरण और गलन, पुद्गल, पुद और गल, जुड़ना और बिखरना, तो यहाँ क्या कहते हैं, आकुंचन और विसर्पण, उसके लिए शब्द आया। आकुंचन और विसर्पण को जो प्राप्त होता है वह पुद्गल द्रव्य, उसको यहाँ सर्व कहा, यानी पुद्गल द्रव्य को ही यहाँ सर्व कहा है, सर्व में अन्य द्रव्यों का समावेश नहीं होता। वही जिसकी मर्यादा है वह सर्वावधि है। अब शंका, चूंकि सर्वावधि जिन समस्त संसारी जीव और पुद्गल द्रव्य को जानते हैं, अतः परमावधि जिनों की अपेक्षा महान होने से उन्हें ही पूर्व में नमस्कार क्यों नहीं किया, ये संसारी जीवों को भी जानते हैं, क्योंकि वो तो कर्म सहित है, शरीर सहित है, वहाँ वो रूपी है ना, इसलिए वो, क्योंकि किसी जीव को देखकर कहते हैं आपकी आयु की मर्यादा इतनी है, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जीव की बात कैसे जाने, क्योंकि वो जीव अभी शरीर से जुड़ा हुआ, उसकी अपेक्षा से उन्हें उसका ज्ञान होता है, ये अभी इसकी आयु की मर्यादा कितनी है, या ऐसे कैसे कर्म है, उसके कर्मों को भी जानेंगे ना, शरीर की भी अवस्था जानेंगे, ये शरीर कितने काल तक रहेगा, उसके द्वारा वो जीव की बात करेंगे, इसलिए संसारी जीव लिया। देखो अभी वर्तमान की तो वो अवस्था जानेंगे, मतलब वो कर्मों की अगली अवस्था जानेंगे, मतलब वो उस जीव का क्या होगा ऐसा कैसे जानेंगे वो वो जीव की बात वहाँ आती है। अब कर्मों की अवस्था से वो कुछ उनके ज्ञान में आता है, अभी ऐसा नहीं कह सकेंगे उस परमाणु की क्या अवस्था होने वाली है, अभी सर्वावधि के तो ज्ञान का विषय हो भी सकता है क्योंकि वो कर्मों की भी अवस्था जानेंगे, परंतु कर्मों के उस जीव के साथ उसका क्या संबंध है वो तो नहीं जानेंगे ना। नए आते जाते हैं और वो खिर भी जाएंगे, उसके आगे कौन सी, अभी कारमान वर्गना छोड़कर वो किसी आहार वर्गना हो गया और कोई अन्य वर्गना हो गई तो उसको जानेंगे, इसलिए यहाँ संसारी जीव की कुछ अवस्थाएं उसके ऐसे बता सकते हैं क्योंकि उसके रूपी के संयोग में है ना, कथनचित रूपी भी कहा है वहाँ संसारी जीव को, क्यों वो रूपी के साथ उसका संयोग है इसलिए। तो यहाँ प्रश्न था कि ये परमावधि से सर्वावधि महान है तो उनको पहले क्यों नहीं नमस्कार किया, पहले भी ऐसा ही पूछा था। हाँ समाधान, नहीं क्योंकि सर्वावधि के महत्व का ज्ञान करने रूप, महत्व यानी उसकी महानता, सर्वावधि की महानता कहो या उसका विषयभूत द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहो, उसका ज्ञान करने रूप गुण से, उसका ज्ञान कैसे होता है परमावधि ज्ञान से, उसका आगे वाला हम ज्ञान समझा सकते हैं उस गुण से, सर्वावधि से परमावधि के महत्व को देखकर उसे पहले नमस्कार किया है। यही बात हमने देशावधि परमावधि के बारे में भी देखी थी। फिर शंका, परमावधि की अपेक्षा सर्वावधि की महत्ता कैसे जानी जाती है, यानी उसके बाद उसकी बात कैसे, यानी सर्वावधि का जो ज्ञान करना है तो परमावधि की अपेक्षा उसको कैसे जानेंगे, उसका समाधान इस शंका का उत्तर देते हैं। अवस्थित राशि प्रमाण विरलन के ऊपर परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को समखंड कर देने पर एक एक अंक के प्रति जो एक एक परमाणु प्राप्त होता है वह सर्वावधि का विषय है। अपनी भाषा में परमावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य है उसको ध्रुवहार से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, जैसे वहां पांच संख्या है और हमने पांच से भाग दिया तो एक है। अपनी क्या बात हुई थी, समझा पांच है भाग देने वाली संख्या, उसको विरलन किया, पांच में विरलन किया और पांच विरलन ने पांच बार एक एक लिखा, उसमें पांच के समखंड कर देने हैं तो कितनी आएगी प्रत्येक, एक 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 एक, तो एक के एक रूप के प्रति कितना आया, एक संख्या आई, वो सर्वावधि का विषय है, एक परमाणु वो सर्वावधि का विषय है। इसके इसके ने वो पर सर्वावधि के जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त ने मध्यम, भेद नहीं है क्योंकि सर्वावधि एक प्रकार का है। परमावधि के उत्कृष्ट भाव को अभी भाव बता रहे हैं, उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट भाव होता है। ये द्रव्य और भाव की बात हो गई, अब क्षेत्र की बात कर रहे हैं। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों से गुणित करने पर, यह अनवस्थित गुणकार तो बढ़ते बढ़ते असंख्यात लोक तक चला गया ना, असंख्यात लोकों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। सर्वावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उत्पन्न कराने के लिए ये न के ऊपर मात्रा देना, परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को आवली के असंख्यातवे भाग से उत्पन्न उसके ही अंतिम अनवस्थित गुणकार से गुणा किया जाता है, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता क्योंकि ऐसा मानने पर परिकर्म में कहे हुए अवधि से निबद्ध क्षेत्र नहीं बनता, वह इस प्रकार से है, यानी वो अकेला एक आवली का असंख्यात भाग से गुणा करो ये बात नहीं घटित होगी क्योंकि आगे वो अनवस्थित गुणकार बढ़ता है ना, इसलिए ये कैसे नहीं घटित होगा वो बता रहे। पहले परमावधि के क्षेत्र के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं, ये संकलित धन की बात यहाँ आ गई। तेज कायिक जीवों के अवगाहना स्थानों से गुणित तेजकायिक जीवों की राशि को, जिसको हम शलाका राशि कहा, परमावधि ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है। उल्टा भी हम परमावधि पर वापस गए हैं। ये जो राशि है पूरी, उसका नाम क्या हमने देखा था? शलाका राशि। किसके? परमावधि के लिए। परमावधि के इतने भेद है ना, परमावधि के भेद है, और उतनी ही उसकी शलाका राशि है। उस राशि को गच्छ करके, उसको गच्छ कहना है। उतनी बार जो कुछ संख्या है उसको गच्छ कहेंगे, पूरे टोटल संख्या को गच्छ कहेंगे। फिर एक को आदि लेकर एक एक अधिक संकलन के, एक से शुरू हुआ है, पहले स्थान पर जो जघन्य परमावधि है उसको हम एक नंबर देंगे। दूसरे नंबर पर जो है उसमें वो संकलन करना है, दो का संकलन। तीसरे नंबर पर है उसके तीन का संकलन करना। तो एक एक अधिक संकलन के, जैसे प्रथम स्थान में एक, द्वितीय में एक प्लस दो तीन, तृतीय में एक प्लस दो प्लस तीन छः हो गए, चतुर्थ में एक दो तीन चार, इन सब की जोड़ देंगे तो दस आ गए, इत्यादि। इसको संकलन कहते हैं या संकलित धन भी कहते हैं। लाने पर, संकलन के लाने पर तेजकायिक राशि के वर्ग को लांघ कर उससे उपरिम वर्ग के नीचे यह राशि उत्पन्न होती है। पूरे शलाका राशि का संकलन धन निकाल रहे। मान लेते हैं परमावधि के ज्ञान के भेद हो गए 10, तो उसकी शलाका राशि 10 आ गई, तो 10 का संकलन धन कितना होगा? संकलित धन 1+2+3 10 तक है ना। तो ये जो शलाका राशि है उसका संकलित धन कितना आएगा, उसकी बात चल रही है। तो वो कौन सी राशि उत्पन्न होती? तो तेजकायिक राशि के वर्ग को लांघ कर, तेजकायिक राशि लिया, वो अवगाहना के भेद यहां नहीं लिया, तो उस राशि के वर्ग को लांघ कर, राशि के वर्ग का और उसके ऊपर वर्ग को नहीं जाना, उससे बीच वाली संख्या। देखो फिर से पढ़ती हूँ, तेजकायिक राशि के वर्ग को लांघ कर उससे उपरिम वर्ग के नीचे यह राशि उत्पन्न होती है। तेजोकायिक जीवों का जो वर्ग है उसका वर्ग करेंगे तो उन दोनों के बीच वाली ये कोई संख्या है। कौन सी संख्या की बात चल रही है? शलाका राशि का संकलित धन कौन सा है उसकी बात चल रही है। इस शलाका संकलन राशि का विरलन करके, अभी ये जो कोई राशि है उसका विरलन करना, आवली के असंख्यातवे भाग को प्रत्येक रूप के प्रति देकर परस्पर गुणित करके उससे देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र घनलोक को गुणित करने पर परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। हमने देखा था जिस पॉइंट का हमको निकालना है उतने उसका संकलित धन करना और लोक को उसके आपस में गुणा किया था। वैसे यहाँ क्या किया? शलाका का संकलन धन, क्योंकि हमको उत्कृष्ट परमावधि का निकालना है, तो जो शलाका राशि है पहले उसका संकलित धन निकाला। वो कितना आया? वो जो कुछ तेजो का जो जीव है उसके वर्ग के वर्ग का बीच वाला जो कोई संख्या है उसके। तो जो वो राशि आई है उसको विरलन करना और वो प्रत्येक के प्रति आवली का असंख्यात्वा भाग देना। यहां दूसरी पद्धति से बताया था, है ना, वहां लोक को ही डायरेक्ट लिया था। तो उसके प्रत्येक रूप के प्रति देकर परस्पर गुणा करना और फिर जो देशावधि का उत्कृष्ट जो लोक है उसको उससे गुणा करना, उतनी बार लेना है ना उसको, परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। इसके अध्वान की खोज करते हैं, अध्वान यानी काल। काल में भी हमने देखा था गुणकार वही रहता है, वहां लोक से गुणा किया था और यहां हम पल्ले में समय कम उससे गुणा करेंगे। देय राशि से, राशि के देय राशि ने अवलिका संख्यात्व भाग, देय राशि के अर्धच्छेदों से युक्त विरलत राशि के अर्धच्छेद उत्पन्न राशि की वर्गशलाका होते हैं। अब ये जो विरलित राशि के अर्धच्छेद उसमें मिला देना तो उत्पन्न राशि की वर्गशलाका होगी। वर्गशलाका अर्थ होता है वो कौन सा उसका वर्गस्थान है, पहला दूसरा चौथा ऐसा उसका वर्गस्थान कौन सा है वो उसकी बात है। विरलन राशि के अर्धच्छेद यहाँ तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दूने हैं। देखो वहां ऊपर तेजकायिक राशि ली थी, उसके वर्ग के वर्ग की बात की थी, तेजकायिक के जितने अर्धच्छेद हो गए उसके वर्ग के अर्धच्छेद उसके दूने होते हैं। जैसे 16 के अर्धच्छेद 4 है तो 16 का वर्ग 256 के अर्धच्छेद 4 से दुगुना 8 होते हैं। 256 का वर्ग पनट्टी होती है तो उसके अर्धच्छेद पनट्टी के अर्धच्छेद 256 के अर्धच्छेदों से दुगुना यानी 8 से दोगुना 16 होते हैं। यहाँ अर्धच्छेदों में बात चल रही है, ऊपर तेजकायिक राशि का वर्ग लिया था और यहाँ अर्धच्छेदों को लेना है, वो कितने हो गए तो दुगुने से कुछ अधिक। ऊपर क्या लिया था, तेजकायिक के वर्ग के वर्ग से नीचे की संख्या यानी बीच वाली संख्या ना, यानी वर्ग से कुछ अधिक कुछ गुना करो तो अर्धच्छेदों में कुछ अधिक करो इतना आएगा। तो विरलन राशि के अर्धच्छेद यहाँ तेजकायिक जीवों के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दुगुने हैं क्योंकि वे तेजकायिक राशि के वर्ग से नीचे स्थित राशि के अर्धच्छेद करने पर उत्पन्न होते हैं। शंका, किनसे यहाँ अधिकता है अर्थात उस अधिकता का प्रमाण क्या है, उसका समाधान, अवगाहना स्थान के वर्ग के अर्धच्छेद और दीयमान राशि की वर्गशलाकाओं से यहाँ अधिकता है। इनका प्रक्षेप करने पर यानी वो मिलाने पर आदि के वर्ग से लेकर परमावधि के चढ़ित अध्वान होता है, यानी हमने देखा था वो काल भी वो बढ़ते चले जाता है, गुना उस गुणित प्रमाण में होता है ना काल भी। तेजकायिक राशि के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दुगुने मात्र इस चढ़ित अध्वान को तेजकायिक राशि की वर्गशलाकाओं से खंडित कर अर्ध रूप कम इससे तेजकायिक राशि की वर्गशलाकाओं को गुणित करने पर तेजकायिक राशि से ऊपर चढ़ित अध्वान होता है। यह परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र तेजकायिक जीवों की काय स्थिति से स्तोक है। यहां तीसरा ही शब्द आया, कौन सा, काय स्थिति। काय स्थिति किसे कहना, हाँ हाँ काय की स्थिति, नहीं वो तो कितनी छोटी होगी, मैक्सिमम 3 दिन होती है। हाँ उसी से वो काय की स्थिति, वो काय बना रहता है, काय का बना रहना उसको कहते काय स्थिति। लगातार उसमें उत्पन्न होने वो उसकी बात नहीं है, वही अग्नि का शरीर उसमें नए नए जीव पैदा होते जाएंगे और वो शरीर ऐसे के ऐसे बना रहेगा, उसको काय स्थिति कहते हैं। ये तो चलती रहती ना, कितने तो ये तो कितने खदान है,
तो 6-6 महीने आग लग रही तो वो आग का जो कोई शरीर होगा दिखता है उसमें नए नए जीव आते
हैं। कितने हम देखते हैं ये तो कोयले के खान है, उसमें अंदर आग चलती रहती है सालों तक रहती है। ये जो कुछ वड़वानल होते हैं या कुछ दावानल होते हैं, समुद्र में भी जो ऐसी अग्नि होती है वो तो होती ही हमेशा, वो तो चलती रहती है समुद्र में पानी में, ऐसे कैसे संभव है। अभी ये तो बॉम्बे हाई में क्या निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है ना, वो तो जलता रहता है जलता ही रहता है। ये पट्टी इसमें थी। अग्नि का ही जैसे हमने निगोद की भी काय स्थिति अलग देखी है, और निगोद का उसमें बार बार जन्मना अलग देखा था, असंख्यात वर्षों की वो भी होती है। हाँ, वैसे वो शरीर बना रहे और उसी में अन्य अन्य जीव पैदा होंगे। हाँ, वो हाँ तेजो वर्गना की तेजस शरीर की स्थिति वो अलग, ये अलग तेजो कायिक अलग, वो तेजस शरीर है, तेजस शरीर की बात। देखो यहाँ क्या कहते हैं, तेज कायिक जीवों की काय स्थिति से स्थोक है, क्योंकि तेज कायिक राशि के अर्धच्छेदों से कुछ अधिक दुगुने प्रमाण उसकी वर्गशलाकाएं हैं। तेज कायिकों की काय स्थिति बहुत है, क्योंकि अभी तेज कायिकों की काय स्थिति कितनी वो बता रहे, तेज कायिक राशि से ऊपर, तेज कायिक राशि कितनी बड़ी हमने निकाली थी पहले, वो तीन बार शलाकात्रय करने से तो उसकी वर्ग शलाका आती है उसकी गुणकार शलाका आती, फिर उसके ऊपर वर्ग शलाका आगे आगे बातें। तो तेज कायिक राशि से ऊपर असंख्यात लोक मात्र वर्ग स्थान जाकर, क्या बात है, उसकी वर्ग शलाकाएं उत्पन्न होती है। किसकी वर्ग शलाका है, काय स्थिति की वर्ग शलाका, इतना तो उसका वर्ग स्थान आगे होगा, तो मूल राशि कितनी बड़ी हो जाएगी। तेज कायकों की काय स्थिति से नीचे असंख्यात लोकमात्र वर्ग स्थानों को छोड़कर स्थित इस परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को आवली के असंख्यात भाग से गुणित परमावधि के अंतिम अनवस्थित गुणकार से गुणा करने पर अवधि निबद्ध क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि परमावधि के क्षेत्र के असंख्यात भाग रूप इस गुणकार से परमावधि के क्षेत्र को गुणित करने पर उसका उपरिम वर्ग भी नहीं उत्पन्न होता। इतनी बात ये लंबी चौड़ी करने की बात क्या थी, कि केवल एक बार आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से सर्वावधि का क्षेत्र नहीं होता, इतनी बात इसमें से समझना। तो फिर कितना गुणकार है, शंकाकार पूछता है ना, ऐसा पूछने पर कहते हैं परमावधि के क्षेत्र का तेज कायिकों की काय स्थिति और अवधि निबद्ध क्षेत्र के परस्पर गुणा करके वर्ग की अर्धच्छेद शलाकाओं के ऊपर, गुणकार के वर्ग की अर्धच्छेद शलाकाओं के ऊपर असंख्यात लोकमात्र वर्ग स्थान जाकर स्थित अवधि निबद्ध क्षेत्र में भाग देने पर जो लब्ध हो, क्या कहते हैं पांच से सौ कितने गुणा का है, उसका गुणाकार क्या है, तो कहते हैं सौ को पांच से भाग दे दो तो बीस आएगी, तो बीस उसका गुणाकार है। वही बात यहां बता रहे हैं कि सर्वावधि का जो क्षेत्र है उसको ये परमावधि के क्षेत्र से भाग दो, जो है उसका गुणाकार है जो लब्ध हो उतना मात्र गुणाकार है, अन्य नहीं, क्योंकि उक्त दोष का प्रसंग आता है। हाँ, उसका समाधान कि एक बार आवली के असंख्यात भाग से गुणा करने पर ये बात नहीं आती तो उसका गुणकार बहुत बड़ा है, वो कितना है, तो उसके लिए वो काय स्थिति आदि की बात समझा कर उन्होंने वो घटित कैसे नहीं होता इतनी बात बताई है। हम तो इतना ही समझना है वो बहुत बड़ा है, वो सामान्य छोटा गुणकार नहीं है। अब काल की बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो। प्रेरणा बे।